SBS हिंदी हमारी कहानियाँ फेसबुक पर।
न्यू साउथ वेल्स में स्थानीय कोरोना मामलों का बड़ी संख्या में आना जारी है और संक्रमण अभी भी नियंत्रण के बाहर दिख रहा है। इस बीच ग्रेटर सिडनी में लॉकडाउन को भी 10 हफ्तों से ज्यादा का समय हो गया है। चिंता की बात यह है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ साथ राज्य में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अस्पताल में जहां हजारों लोग वायरस से पीड़ित हैं, वहीं गहन देखभाल में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में से ज्यादातर वो लोग हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ था। राज्य में अस्पताल में भर्ती होने की दर और मृत्यु इस वक्त मुख्य चिंता का विषय है। हालांकि न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के डॉक्टर जेरेमी मैकेनल्टी का कहना है कि रोगियों का इलाज घर पर उनकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है।
Clinicians are very keen to make sure that the best level of care is provided to individual patients, and often that will be being at home in your familiar environment, outside, often hospitals where a bunch of other stuff is going on, and it's not in your best interest to be in hospital if you don't need to be in hospital. My understanding of the unfortunate death reported in somebody who died at home yesterday was that they had not been tested for COVID until after they had died, and so they hadn't been in the care present of New South Wales Health.
कोरोना की इस लहर से बचने का सबसे सही उपाय इस वक्त टीकाकरण ही दिख रहा है। पिछले हफ्तों में राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान को तेज भी किया है और हर दिन औसतन 1 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य मंत्री ब्रेड हैजर्ड का कहना है कि वायरस संक्रमण को कम करने के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण उपाय है।
I want to stress the importance of vaccination yet again. When we look at the number of people in our intensive care units, of the 173 people in ICU or intensive care units, 137 are not vaccinated. 29 people have received just their first dose of a COVID-19 vaccine. And 7 have received 2 doses of a COVID-19 vaccine.
न्यू साउथ वेल्स के कोरोना संकट के बाद विक्टोरिया में भी स्थानीय कोरोना मामले बढ़ने लगे हैं। दिन के औसतन 100 मामलों के बाद अब ये संख्या 200 मामले प्रतिदिन की तरफ बढ़ रही है। कोरोना महामारी के बीच लोग वित्तीय परेशानियों से भी जूझ रहे हैं और सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं। हालात को समझते हुए विक्टोरिया और फेडरल सरकार ने लॉकडाउन विस्तार से प्रभावित व्यवसायों के लिए $2.34 बिलियन के संयुक्त समर्थन पैकेज की घोषणा की है। एम्प्लॉयमेंट मंत्री मार्टिन पाकुला का कहना है कि वित्तीय पोषण योजना की मदद से व्यवसाय सितंबर के अंत तक लाभ उठा सकेंगे, जिसमें $279 मिलियन की सहायता दी जाएगी। संघीय कोषाध्यक्ष जॉश फ्रिडेनबर्ग का कहना है कि ये मदद छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों को तब तक बचाए रखने में सहायता करेगी जब तक कि विक्टोरिया राज्य बाकी ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर से अपनी अर्थव्यवस्था शुरू नहीं करता।
Hairdressers, gyms, cafes, tourism businesses and many other businesses across the state impacted by these lockdowns will receive this new economic support. We recognize this is a very difficult time for small and medium-sized businesses, but there is light at the end of the tunnel. With the 70-80% vaccination rates now in sight, we look forward to the day in Victoria when the lockdowns come to an end.
ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में भी स्थानीय कोरोना मामलों का आना जारी है और संक्रमण का खतरा यहां भी बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य अधिकारी इस वक्त स्थिति को लेकर सचेत जरूर हैं, लेकिन कोरोना मामले यहां शून्य होंगे यह कह पाना मुश्किल है। अब बात करते हैं क्वींसलैंड की। क्वींसलैंड राज्य में कोरोना मामले काबू में जरूर हैं, लेकिन प्रशासन स्थिति को लेकर बेहद सचेत है। राज्य में ट्रक चालकों की वजह से हालात थोड़े बिगड़े जरूर थे, लेकिन इसके बावजूद राज्य के दक्षिण पूर्व में व्यापक प्रतिबंध नहीं लगाए गए। हालांकि ट्रक ड्राइवर की वजह से 1000 से अधिक परिवारों को 14 दिन के संगरोध में रखने का आदेश जरूर दिया गया। इस वक्त पूरे देश में टीकाकरण अभियान पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 70-80% टीकाकरण के बाद सरकार नई योजनाओं के साथ जीवन को सामान्य दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास करेगी। थेरापूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख प्रोफेसर जॉन स्केरेट के अनुसार कुछ हफ्तों में COVID-19 मॉडर्ना वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक ऑस्ट्रेलिया पहुंच रही हैं।
It's true that as we know, while sadly there have been some younger people quite ill with COVID, by and large the impacts of COVID infection on the younger people, especially teenagers, are much more mild than impacts on the middle-aged and the elderly. And so at the moment, the UK JCVI has said, let's just focus the 12 to 15-year-old vaccinations on those with other health things, such as heart problems, such as diabetes and so forth.
इस बीच वयस्कों के लिए मंजूरी के बाद देश के दवा नियामक ने 12 से 17 साल के बच्चों के लिए मॉडर्ना की स्पाइकवैक्स वैक्सीन को अस्थाई मंजूरी दे दी है। हालांकि इस आयु वर्ग के लिए रोल आउट की मंजूरी वैक्सीन विशेषज्ञ सलाहकार निकाय द्वारा दी जाएगी। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर माइकल किड का कहना है कि अगले सप्ताह के भीतर सलाह प्राप्त करने की उम्मीद है।
The government will now be waiting the advice of the Independent Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI, on how the approval of the Moderna vaccine for the 12 to 17-year-olds should be incorporated into our national COVID-19 vaccine rollout. And this advice is expected to be received this week. It follows the government accepting ATAGI's advice that the Pfizer vaccine be administered to adolescents aged 12 to 15 years, and bookings for that age group to receive the Pfizer vaccine will be opening on the 13th of September.
आपको बता दें कि मॉडर्ना के टीके को कनाडा, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए अनुमति मिल गई है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की 62% से अधिक आबादी को अब कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है और 37% से अधिक आबादी टीके की दोनों खुराक ले चुकी है। SBS न्यूज से असाम अल गालिब की रिपोर्ट को हिंदी में पेश किया है विकास समाना ने।
SBS हिंदी, हमारी कहानियां फेसबुक पर।